सभ्रैः भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोहरिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं वन्देहम् श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजी साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता शिविशाखनविदंश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्गयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमा जयतां सुरतपङ्गोर् मम मन्दमदर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधामदनमोहनो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैवच्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे रहे व्यक्ति सब कुछ सुन सकता है सब कुछ गा सकता है लेकिन जब तक भगवान के भक्तों की संगति नहीं होती है तो वो भगवत गुणानुवाद नहीं गा सकता है और भगवान के गुणानुवाद जीव के लिए सर्वोपरि मंगलकारी है। वो इतना मंगल करने वाला है कि जीव कभी सोच भी नहीं सकता है। वो आश्चर्य मानने लगेगा जब उनके जीवन में वो कुछ भगवत कथा श्रवण का आदत डालेगा और उल्लासपूर्वक और रसपूर्वक जब वो कथा श्रवण करेगा तो सुनिश्चित वो पाएगा कि उनको कितना बड़ा लाभ हो रहा है। ये क्या बज रहा है? फैन की आवाज है। भगवान के गुणों की महिमा न केवल हम लोग न साधु लोग, संसार के जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनिगण महर्षिगण ब्रह्मा शिव इत्यादि भी श्री भगवान के गुणों का गान करते हैं। शुद्ध गोस्वामी पाद जब नमिष्याने के ऋषि मुनियों को एकत्रित देख करके हरि कथा सुनाने लगे तो ये प्रथम स्कंद में ही और ऋषिगण कुछ उनकी सराहना करने लगे। वो कहने लगे कि महाराज परीक्षित माँ भागवत है और श्री सुखदेव गोस्वामी पाद के द्वारा जब उन्होंने हरिकथा श्रवण किया तो उन हरिकथा के बल पर उन सुखदेव गोस्वामी पाद ने उनको भगवान के पाद मूल तक पहुंचा दिया। कहते सवई महाभागवत परीक्षित ये न अपवर्ग अक्षम अदप्र बुद्धि ज्ञान न वैयास की सबितेन भेजे खगेंद्र ध्वज पाद मूलम। खगेंद्र कहते हैं भगवान को, खग माने गरुड़ जी पंखी, खग का अर्थ खम माने आकाश और ग का अर्थ गमन करने वाला। आकाश में सर्वोपरि स्पीड से चलने वाले गरुड़ जी के जो ऊपर विराजमान रहते हैं ऐसे भगवान के पाद मूल तक व्यासकी के शब्दों ने वेद व्यास महाराज के शब्दों ने सॉरी सुखदेव गोस्वामी पाद के शब्दों ने उनको कहां भेजा, भगवान के पाद पद्मों में भेज दिया। अतः वो लोग उनकी सराहना करते हुए कहने लगे कि तन्न परम पुण्य समृतार्थम आख्यानम अति अद्भुतम योग निष्ठम आख्याई अनंता चरितो उपपन्नम परीक्षितम भागवतम अविरामम। कहते हैं कि हे सुद गोस्वामी पाद ये जो पुण्यमयी उपाख्यान आप सुना रहे हैं तो उन उपाख्यान अति अद्भुत है और जिनमें भगवत प्रेम की निष्ठा की पराकाष्ठा स्वरूप है। और बता रहे आख्यानम अनंत चरितो उपपन्नम जिनमें अनंत शक्तिमान भगवान के गुणों का वर्णन होता है और परीक्षित महाराज चूंकि महाभागवत है तो आप उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ हरि कथा तो ये हरि कथा आप हमें अवश्य श्रवण करवाइए। जब शुद्ध गोस्वामी पाद को इस प्रकार ऋषि मुनियों ने कहा कितने देर ऋषि मुनि 88,000 निठल्ला नहीं बैठे हुए थे कि कोई काम धाम नहीं था बैठ गए कथा के लिए, उसमें बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े पंडित थे। जो प्रश्न करने वाले सौनक जी है वो सौनक जी की कैपेसिटी के विषय में एक कुलपति शब्द आया है। कुलपति अभी मैं श्लोक को खोज नहीं पाऊंगा इस ग्रंथ से, कुलपति नाम ऐसा कहते हैं कुलपति शब्द उन सौनक जी को संबोधन करने के लिए दिया गया है और कुलपति की व्याख्या एक आचार्य ने किया है कि 10,000 व्यक्तियों के खाने पीने का व्यवस्था करके जो उनको पूरा पाठ सिखाए सालों साल पर्यंत वेद सिखाए उनको कहते हैं कुलपति। सोचिए आप हम लोग 10 आदमी का व्यवस्था करते तो बड़े मैनेजर सोच रहे कौन ऊपर होता है, अरे यार व्यवस्था किया 10,000 व्यक्ति का खाने पीने के व्यवस्था के साथ जो व्यक्ति अध्ययन करा सकता है वेदों का और वेदों में जो एक्सपर्ट करा सकते हैं तो देखो उनको कहते हैं ये कुलपति बोल रहे हैं शुद्ध गोस्वामी पाद को। 88,000 ऋषि मुनि महान महान ऋषि बैठे हुए थे, शुद्ध गोस्वामी पाद ने जब सुना उनके मुख से तो शिष्य तो वाचन आइए आगे के श्लोक में जाते हैं। दो चार श्लोक हम देखेंगे जो भगवान की महिमा का गान है। सुदुवाच अहो वयम जन्म भूतो अध्यास्म उद्धान मृत्या विनोम जाता दोष कुंड आदिम विदनोति शीघ्रम महत्मान अभिदान योग शुद्ध गुरुचरण बात अपने आप को कृतकृत्य समझते हुए वो कहने लगे अहो है? कहते हैं अहो आश्चर्य के लिए बोल रहे हैं, अहो वयम जन्म बुद्धस्य हास्म, यद्यपि मेरा जन्म उन विलोम जाति में हुआ है। शुद्ध गोस्वामी पाद की मां ब्राह्मणी थी और उनके पिता क्षत्रिय थे, इसको विलोम जाति कहते हैं। क्षत्रिय क्षत्रियाणी के साथ विवाह करेगा तो ऐसा जो कुल है उन कुल को दुष्कुल माना जाता है, हीन कुल माना जाता है, नीच कुल माना जाता है एक तरीके से। तो शुद्ध गोस्वामी पाद ऐसे नीच कुल में जन्मे हुए थे। वो कहते हैं कि अहो वयम जन्म भूतो अत्याहास्म, कहते अहो आज मेरा जो मेरे जन्म से मेरे हृदय में ग्लानि था कि मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, लेकिन कहते हैं कि उन दोष कुंज माध्यम विदनोती शीघ्रम, मेरे हृदय से आज वो दोष कुल में उत्पन्न होने का, दुष्कुल में उत्पन्न होने का जो ग्लानी है वो ग्लानी मेरे हृदय से आज चला गया। क्यों क्यों नहीं चला जाएगा, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि गण उनको हरि कथा के लिए प्रेरित कर रहे हैं बैठ करके, आप कथा कहिए कथा कहिए कथा कहिए। देखिए वो कहते हैं और उसका कारण क्या है, बोले वृद्धानु वृत्ति विलोम जाता, विलोम जाति में उत्पन्न होने के बाद भी मैंने भगवान के भक्तों के साथ कुछ वार्तालाप मात्र किया। सुखदेव गोस्वामी पाद की सभा में ये शुद्ध गोस्वामी पाद बैठे हुए थे, हाँ लेकिन वो थे बड़े मेधावी व्यक्ति, इतनी उनकी बुद्धि विशाल थी कि वो ये 18,000 श्लोक कंप्यूटर राइट हो गया था, शुद्ध गोस्वामी पाद के माइंड में वो सब श्लोक चले गए थे। इसलिए नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इनको कहते हैं कि आप उन हरि कथा को हमें श्रवण कराइए, तो वो उनके हृदय में बहुत टाइम से ग्लानी था, एक दुख था, अरे रे मैं विलोम जाति में उत्पन्न हूँ ऐसा दुख था। तो वो दोषकुल्य आदिम, आदिम कहते हैं मन मन में एक ग्लानी उत्पन्न होते उनको आदि बोलते हैं, व्याधि बोलते हैं शरीर की बीमारी को, आदि बोलते हैं मन के टेंशन को है? तो उनके मन में टेंशन था, अरे मैं दुष्कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन कहते हैं कि वृद्धानु वृत्त्या आदि भगवान के भक्तों के साथ थोड़ा बैठने का यह फल है, है? एक सामान्य बात मैंने किया तो कहते हैं मन महत्त नामम अभिधान योग, केवल उन महापुरुषों के संयोग मात्र से कुछ वार्तालाप करने मात्र से मेरे हृदय का एक ग्लानि आज चला गया, क्योंकि 88,000 विद्वान लोग हमको बोल रहे हैं कि आप हरि कथा श्रवण कराइए, कोई कम वैल्यू है क्या है? इतने बड़े बड़े महात्मा लोग बोले कि नाना आप हरि कथा का श्रवण कराइए। शुद्ध गोस्वामी बात कहते कि आज मेरी जो मेरा जन्म दूषित जाति में हुआ था तो वो दूषित जन्म का जो ग्लानी मेरे हृदय में था आज वो चला गया, मैं कृतकृत्य हो गया। वस्तु तो ऐसा होता है भक्ति के कारण, भगवान की भक्ति की ये महिमा होती है कि थोड़ी सी भक्ति करने से व्यक्ति को क्या नहीं मिलता है इस संसार में, क्या थी ये बहुत छोटी चीज है, बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं जैसे मुक्ति इत्यादि पदवी जिनको प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनिगण 1,000,000 साल तपस्या करते थे, वो भक्ति मार्ग में बीच रास्ते में पड़ी हुई मिलती है। सताम पदंगाम मम विद्य समीप यत कर्ण रसायना कथा बोलते हैं, इसका कैसे अर्थ माइनस हजार श्लोक वो कहते हैं उस श्लोक में कपिल मुनि माता देवहूति को कह माता ये जो मुक्ति भक्ति के मार्ग में पड़ी हुई है ऐसे वर्तम पर साधु की संगति मात्र से व्यक्ति उस मार्ग पर चल पड़ता है जिस मार्ग में मुक्ति मिलती है और इस मार्ग से च्युत होने वाले व्यक्ति को छोड़ देता है भक्ति उनको स्वर्ग मिलता है। क्या पूरा जिंदगी ये लोग कर्मकांड करके स्वाहा हा 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 करते हुए शरीर शीशम जैसा काला हो जाता है कभी भी वो स्वर्ग नहीं प्राप्त करते। कलयुग में कोई नहीं प्राप्त करेगा क्योंकि अविष्यान्न ठीक नहीं है दूषित सब है गाय का घी तो मिलता नहीं कहीं देवता लोग वही खाते हैं। तो वो स्वर्ग प्राप्त भक्ति से फॉल डाउन होने वाले को स्वर्ग मिलता है। तो शुद्ध गोस्वामी पाद के हृदय से वो ग्लानी चली जाए वो कौन बड़ी बात है। शुद्ध गोस्वामी पाद ये भगवान के भक्तों की संगति का प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं कि उनका क्या प्रभाव है। देखिए अपना उदाहरण नहीं देना चाहिए लेकिन मुझे याद पड़ रहा है मैं पुणे में क्लास दे रहा था और 9 बजे का टाइम लिखा गया था कि 9 बजे बंद कर देना चाहिए पहले से ही वो पेपर आ जाता है 9 बजे क्लास स्टॉप बंद कर देना है 9 बजे पहले से मुझे बताया गया कि 9 बजे आप क्लास बंद कर दीजिए। तो मैं क्लास दे रहा था तो क्लास देते देते ब्रह्मचारी लोग बैठे थे और बड़े स्नेह से सुन रहे थे। बीच में एक चिट्ठी आया वो टेबल पर और मैं तो चिट्ठी देखा इंग्लिश में लिखा था और मैं थम सब सत्य है जो वो तो बताना पड़ेगा मैं तो गुजराती साथ पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ तो मैं तो चिट्ठी के ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो इसमें क्या लिखा वो भी पता नहीं है कौन ध्यान देगा। तो मैं 9 बजे बराबर बंद किया क्लास तो 9 बजे बंद किया तो राधेश्याम प्रभु बता रहे वहां के प्रेसिडेंट राधेश्याम दास राधेश्याम प्रभु बता रहे गुड़ा किसको आप बंद क्यों कर दिया। मैं बोला 9 बजे का आपने टाइम बोले आपको चिट्ठी भेजा मैं बोला मुझे इंग्लिश नहीं आता तो और आश्चर्य में पड़ गए सबको बोले आप इंग्लिश नहीं जानते। धीरे से राधेश्याम प्रभु ने हमारे कान में कहा प्रभु आप भले ही पढ़े लिखे नहीं है आपको 170 आईटी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं आईटी वाले। उस दिन मेरे हृदय में एक ग्लानी था ये चला गया उसी दिन क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रहा था मैं इंग्लिश का पाठ नहीं किया अगर मैं इंग्लिश पढ़ा हुआ होता था हाय हाय करता था हृदय में कि अरे रे इंटरनेशनल सोसाइटी में मैं हूं और पाठ पाठ बिल्कुल नहीं किया। ये ग्लानी बहुत टाइम से चल रहा था लेकिन जब बोला कि आईटी स्टूडेंट 170 आपको सुन रहे मेरा वो ग्लानी वस्तुत भक्ति से जो इतना वस्तु मिलता है व्यक्ति को पता नहीं क्यों लोग भजन नहीं करते और क्यों भगवान का गुणानुवाद नहीं गाते। आप सत्य मानिए ये गंगूटा चाप व्यक्ति होते हुए मैं हरदम फ्लाइट में चलता हूं एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है फ्लाइट और योग्यता क्या है थम्स अप ये हमारी योग्यता है। ये भक्ति के कारण है पता नहीं लोग क्यों भजन नहीं करते। और ये कोई मैं कोई पावरफुल भगत नहीं हूं छोटा मोटा भगत हूं कोई एकदम बड़ा भक्ति कर रहा हूं कि बड़ा अभी सिद्ध हो गया महात्मा हो गया सिद्धि के बाद तो पता नहीं क्या मिलेगा और जब अभी इतना मिल रहा है और आप में से बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे लेकिन हम लेखन पर तो सुन रहे कि नहीं सुन रहे मर्यादा सुन रहे है कि नहीं। अब ग्लानी टिकेगा हृदय में, ये तो मेरा खुद का अनुभव है कि बहुत टाइम का वो ग्लानी मेरे हृदय से चला गया। व्यक्ति भक्ति से क्या नहीं प्राप्त करते, क्या नहीं प्राप्त करते, उनको जो चाहिए वो सुविधा भक्ति से मिल जाती है, पर शर्त एक है कि उनको लोभी नहीं होना चाहिए। मेरा यश बढ़े, मेरा धन बढ़े, भगवान उनको सब कुछ देंगे, क्योंकि ये संसार का नियम है, इच्छित वस्तु दूर भागती है और अनिच्छित वस्तु सामने आती है। इसे जिनकी इच्छा है, जो आपको प्राप्ति का इच्छा है, उनका इच्छा मत कीजिए, सामने जाएगा वो वस्तु। जो लोग जान गए हैं, भजन करते हैं, वो लोग जान जाते हैं, जो नहीं चाहिए उनको सोचो मत। हम लोग क्या करते हैं, उनके ही विषय में सोचा करते हैं, अरे एक गाड़ी नहीं मिला, फोर व्हील नहीं, टू व्हीलर में खजिट रहा हूँ, फोर व्हीलर नहीं मिला, फोर वो नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सोचने से वो दूर जाएगा। है? आपको चाहिए तो सोचना बंद कर दीजिए, भजन कीजिए केवल, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम अब कहीं से भगवान आपके लिए गाड़ी अरेंज करेंगे। लेकिन सोचना बंद, आप मानेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं, बंगाल के और उड़ीसा के ऐसे लड़के को मैं जानता हूँ जो लोग मेरी तरह है, लेकिन उनकी वाइफ लोग, उनकी वाइफ लोग पीएचडी पढ़ी हुई उनकी वाइफ लोग है, बताइए। जो फॉरेन चले गए, बिना पढ़े लिखे लोग फॉरेन चले गए और फॉरेनर से विवाह किया, बताइए क्या कमी है? क्या कमी, क्या चाहिए भक्ति से, क्या चाहिए? कोई भी ग्लानी नजर में नहीं रहेगा, बट इच्छा इच्छा नहीं करना चाहिए, बस अपने आप भगवान अरेंज करते जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगा। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं, हमारे साथ एक फॉरेन में, अभी मैं विदेश से आया, हमारे साथ एक फॉरेन में एक ब्रह्मचारी रहता है, वो ब्रह्मचारी बोलता है प्रभु जी मुझे विवाह नहीं करना है। तो बोला ठीक है मत करो, भगवान को प्रार्थना करो कि तुम ब्रह्मचारी आजीवन तो रह जाएगा। बोले नहीं ये लफड़ा है हमारा। बोले क्या है भाई? बोले जबरदस्ती कोई इच्छा कर रहे हैं हमारे साथ विवाह करने का। मैं बोला टालो टालो, भगवान को प्रार्थना करो, नहीं तो जाएगा तू काम से। क्योंकि यहाँ तुम भक्ति कर रहे हो और थोड़ा सा भी इच्छा का पोषण किया, एक आध बार इच्छा कर लिया ना, तो भगवान सेट कर देंगे, मर जाएगा जीवन पर्यन्त। जो जो लोग विवाह किया हमारे जैसे, उनको पूछो पहले, ऐसे डरो मत, विवाह 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 डरो मत, जो लोग किए उनको पूछो तो वो लोग का हालत कितना खराब है। वो बोलते हाँ यार मैं जानता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कहीं अरेंज ना हो जाए। मैं बोला तब यहाँ से भागो, यहाँ रहने में खतरा है, कहीं अरेंज ना हो जाए, यहाँ तक डर लग रहा है। ये वस्तु तो अयोग्य व्यक्ति बिल्कुल मेरे जैसे अनपढ़ है, उड़ीसा का भगत है, दशरथ उनका नाम है, दशरथ प्रभु बताओ, और वो भी बड़े घर की लड़की, जैसी तैसी नहीं, बताइए। वो लड़की को भाई नहीं है और एक अकेली अपने पिता की प्रॉपर्टी की मालिक है। मैं बोला तुम भाग, मर जाएगा यहां से भाग, जल्दी किस मुंह से निकल, ये हिसाब है, सोचिए आप। बोले कभी ना कभी तुमने विचार किया था? बोले पहले सोचता था। मैं बोला क्यों सोचा तुम पहले? तुम भक्ति कर रहे हो, जानते हो भक्ति लता क्या है? भक्ति लता वांछा कल्पतरु के समान, एक कल्प लता के समान है। भक्ति करते हुए व्यक्ति जो कुछ भी भाव पोषण करते हैं फलित होता जाता है। यहां सुंदर गोसाई बात अपना अनुभव बता रहे, कहते हैं महत्मानम अभिधान योग शिक्रम विजनोति दोष कुल्यम आदि। केवल भगवान के भक्तों का थोड़ा संग किया, वार्तालाप किया, उन वार्तालाप करने मात्र से कहते हैं शीघ्र ही मेरे हृदय में जो ग्लानी था वो ग्लानी चला गया। अब आइए भगवान के गुणानुवाद वो गा रहे हैं, आगे क्या क्या गुण गा रहे हैं हम लोग थोड़ा देखेंगे। कुत गुण गुण तो नाम तत्स महत एकांत परायण से जो अनंत शक्ति भगवान अनंत महत गुणतार यम अनंतम आहु। बता रहे शुद्ध गोस्वामी पर कि देखिए भगवान जिनका एकांतिक भक्त लोग का जो आश्रय है वो भगवान का कोई व्यक्ति नाम ग्रहण करता है तो नाम ग्रहण करना का क्या महत्व होगा। जब मैं केवल साधु संगति में थोड़ा सा बैठा और तब इतनी बड़ी 88,000 मुनियों के द्वारा प्रशंसा मिली तो जो नाम लेते हैं उस भगवान का महत्तम एकांत परायण से कुत उन गुण तो नाम तस्य बोलते उन महात्माओं का एकांतिक आश्रित भगवान का जो नाम ग्रहण करता है गुण तो मन लेता है उस व्यक्ति का फिर क्या कहना। चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखे वो एक बात लिखे है कि देखिए दोषकुल्यम आदि दुष्कुल में जन्म पाप के कारण होता है और अच्छा कुल पुण्य के कारण मिलता है। और कहा जाता है कि पाप तो भोगे बिना काटा नहीं जाएगा, भोग तो करना पड़ेगा। ठाकुर ये बात उठा करके आगे प्रश्न उठा करके ये कह रहे अरे बोले भगवान कैसे हैं, इसे तो कहते हैं यो अनंत शक्ति भगवान अनंत उन अनंत शक्तिशाली भगवान अनंत इनके गुण अनंत है इसलिए नाम ही भगवान ने भगवान का एक नाम रख दिया गया अनंत। कैसे अनंत शक्तिशाली भगवान का ये प्रभाव है कि बिना भोगे व्यक्ति का पाप कट जाता है। सारत कर्म बिना भोगे जो कोई उड़ा सकता है संसार में तो केवल मात्र भगवान के भक्त है उनके पास फैसिलिटी है, नहीं तो पाप का तरण आएगा वो चढ़ेगा सर पर। इसलिए सिंसियर बनकर के हरे कृष्ण जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अपने आप को ज्यादा पुण्यशाली नहीं सोचना चाहिए। अगर पुण्यशाली होते थे तो बॉम्बे नरीमाइन पॉइंट में घर होता था, इधर कचरे में मरने की भी नहीं वासी वापी वापी और जहाँ रोज धुआं खींचना है वापी वापी। ओ, मैं ट्रेन से निकलता हूँ तो वापी से घबराता हूँ और आप लोग निवास यहाँ कर रहे हो वो दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। ये नहीं सोचना चाहिए अरे हम लोग तो गाड़ी हमारे पास है वो, अरे गाड़ी फाड़ी क्या चीज है, आप लोग देखिए लोगों के पास क्या है, हमारा क्लास नहीं है कोई क्लास नहीं है। इतना संपत्ति लोगों के पास आज भगवान की कृपा से इतना संपत्ति बहुत लोगों के पास हो गया है। अगर पुण्य होता था तो सीधा जन्म अमेरिका होता था, है कि नहीं, पुण्य काटने के लिए पर अच्छा हुआ उधर नहीं हुआ ठीक है, इस वापी में बैठे ठीक है क्योंकि हरि कथा ये महाभाग्य के कारण मिलता है। लेकिन कुछ न कुछ हम लोग का महाभाग्य है कि जिसके कारण ये हरि कथा हमको मिलता है। कहते कुत गुण गुण तो नाम तत्स महंत एकांत परायण से जो अनंत शक्ति भगवान अनंत महद गुणत्वाद जब अनंतम आहु, क्योंकि भगवान की अनंत शक्ति के प्रभाव के कारण व्यक्ति अपने पाप को भोगे बगैर काट सकता है, भोगे बिना। ब्रह्मा से लेकर के एक श्लोक है ब्रह्म संहिता में कैसे हो इंद्रगोप कैसे वो श्लोक है कहते हैं एक इंद्र से लेकर के इंद्रगोप कीड़े तक वितनोति भाजाम अपने कर्म का भोग करना ही पड़ता है लेकिन भगवान का भक्त जो है वो बिना भोगे इस कर्म को काट देता है। बड़ी बड़ी विपत्तियां भूतकाल में भविष्यकाल में आने वाली होती है वो व्यक्ति केवल भक्ति करने मात्र से उन अनंत शक्ति भगवान के प्रभाव के कारण वो नाम लेने मात्र से काट देता है, नाम लेने मात्र। अजामिल उसका उदाहरण है शास्त्र में, और कहीं अजामिल वर्तमान में हरकृष्ण मूवमेंट में कहीं अजामिल निवास करते हैं। हाँ, एक दो चार नहीं, अजामिल का ढेर लगा हुआ है। कोई क्या क्या कर रहा था, इतना दूषित कर्म कर रहा था, लेकिन आज भगवान के नाम ग्रहण करने मात्र से अत्यंत पुण्य पवित्र व्यक्ति होकर के संसार में घूम रहे और लोग प्रणाम करते हैं, प्रभु जी प्रभु जी, ले भला है। देखिए, इसलिए कहते हैं कि ये भक्ति है वो सामान्य वस्तु नहीं। ना नरसिंह मेहता क्या गए गुजराती लोग को, उदल भक्ति पदार्थ मोटू तद भूतल भक्ति पदार्थ मोटू आज तन लोक मां नहीं रे पुण्य करी घना अमरा पूरी पाना पुण्य करी अमरा पूरी पाना पर अंत चौरासिनी मानी रे भूतल भक्ति पदार्थ नरसिंह मेहता गुजराती कवि। वो कहते संसार में भक्ति से बढ़कर के और कोई पदार्थ है ही नहीं। सबसे बड़ा पदार्थ इस संसार में भगवान की भक्ति है, क्योंकि अनंत शक्तिमान भगवान की कोई व्यक्ति मात्र भक्ति शुरू करता है, उनकी शुरुआत में वो बड़े बड़े लाभ को प्राप्त करता है, बड़े बड़े लाभ। प्रभाव किसका है? न भगवान का प्रभाव है। कहा जाता है स्कंद में श्री माता देहूति को लक्ष्य करके कपिल मुनि बता रहे, कहते हैं जो व्यक्ति के मुख में नाम विराजमान है वो व्यक्ति ने समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया है और जितना दान धर्म है वो सब पुण्य कर लिया माना जाएगा, ये कर लिया है, है? और जितना भी वेदाध्ययन है वो पाप पूरा कर लिया है, नहीं तो उनके मुख में नाम पापी लोग भी नाम का उच्चारण नहीं कर सकते। अरे कृष्णा 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 हरे 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 राम शुद्ध गोसाई बात। अभी व्याज स्तुति कर रहे भगवान की, आगे के श्लोक में वो एक और श्लोक कहते हैं, वो कहते हैं तावतारम ननु सुचितिन गौरी गुणैर असाम्यन अतिशायन से हितरितरान दार्थितो विभूति यस्यांग्री रेणु जुष्टो अन अविप्सो। वो कहते हैं कि गुणों में उन भगवान के समान कोई नहीं हो सकता, तो अतिशय का बात छोड़ दीजिए, उनसे ज्यादा किसी के पास गुण है ये तो हो ही नहीं सकता। और ऐसे भगवान के गुणों को बताने के लिए एक बात कहने से सब कुछ हो गया, एतावत तालम इतना कह देना उनके लिए बस हो गया, सुचितिन माने बता देना, इतना बता देना काफी है। क्या बता रहे हैं? बड़े हित में इतना प्राप्ति तो विभूति, विभूति कहते हैं श्री धन की देवी लक्ष्मी जी, कहते अपने अपने कहते उनकी सेवा की प्रार्थना करने वाले ब्रह्मा जी इत्यादि का त्याग करके श्री भगवान की चरण रेणु की सेवा करती। यदि भी भगवान को नहीं चाहिए कि लक्ष्मी हमारी सेवा करे, लेकिन तीस पर भी उन अन अभिक्षु श्री भगवान की चरण सेवा लक्ष्मी जी कर रही है। इससे समझ लेना चाहिए कि वो कितने महान, लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, आप कितने बड़े भगत है, लेकिन लक्ष्मी का नाम आएगा, ओहो लक्ष्मी। हाँ, जब वो प्रकटित हुई आठवें स्कंध में कथा है, आठवें स्कंध में जब वो समुद्र से प्रकटित हुई लक्ष्मी जी, तो वरमाला लेकर के सब लोग स्तब्ध हो गए, क्योंकि लक्ष्मी जी का सौंदर्य इतना अद्भुत, लक्ष्मी है साक्षात, और सब लोग जान लिया कि तो साक्षात लक्ष्मी है। तो जो ये देख रहे थे समुद्र मंथन देवता और दानव लोग कर रहे थे, भगवान उनके साथ समुद्र मंथन कर रहे थे, देवता लोग फ्लाइट में, कुछ लोग जैसे देवदेव महादेव ब्रह्मा जी इत्यादि, वो सब ऊपर में फ्लाइट लैंड रख करके एक जगह में स्थित रख करके वो लोग देख रहे थे समुद्र मंथन। तब तक लक्ष्मी जी उत्पन्न हुआ, ये लोग फटाफट लैंड किए, बोले लक्ष्मी जी, लाइन में बैठ गए। और लक्ष्मी जी के हाथ में एक वरमाला थी, वरमाला, अब वो चूज करेगी पति। सब लोग देवता लोग एक साइड लाइन लगा करके बैठ जाए, एक साइड असुर, असुर भी कम सुंदर नहीं है, सबसे थर्ड क्लास मनुष्य है, असुर तो बहुत सुंदर है उससे। और देवता लोग का बात छोड़ दीजिए, उनकी तो सुंदरता की कथा है शास्त्र में, उनका बात छोड़, मनुष्य सबसे थर्ड क्लास है, सबसे गया बिता, कोई कचरा है फेंक दिया है तो मनुष्य के रूप में फेंक। हाँ, लेकिन एक बड़ा लाभ है जो अभी आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, मैं प्राप्त कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति ये मनुष्य शरीर में ही की जा सकती है, उसमें उनकी दुर्लभता है, बाकी कोई वैल्यू हो थोड़ा सा भी नहीं, वो लोग देखते तक नहीं, कुछ मांगते हैं तो कुत्ते की तरह थोड़ा चाटा हुआ पत्थर फेंक देते हैं। देवता लोग का वो खाया हुआ पत्तल यहाँ का राज्य इत्यादि का भोग है, सोचिए देवता लोग के पास क्या भोग होगा, वो पत्तल खा करके फेंक देते, कुछ कुत्ते लोग इकट्ठा होकर के चाटते हैं ना, ऐसे हम लोग चाट रहे हैं ये भोगों को, और वो भी राजा की पोस्ट जैसे जैसी नहीं, बड़े बड़े राजा लोग, मिनिस्टर तो 5 साल में बदली हो जाएगा, मिनिस्टर वाला नहीं बात कर रहे, प्राइम मिनिस्टर जो वो सब तो जाने वाले हैं तत्काल, राजा की पोस्ट जो पूरा जीवन पर्यंत राज्य जिनको मिला है। देवता लोग के भोग के सामने एक राजा का भोग पत्तल चाटने के तुल्य है, उनका वो ऐश्वर्य इत्यादि है। लेकिन वो लोग भी लाइन में लग गए, फटाफट फटाफट बैठने लगे, क्यों, लक्ष्मी जी और वरमाला लेकर के वर चूज करने के लिए, और जो लोग की कैपेसिटी नहीं थी वो भी भाग्य को अजमा रहे थे, बोले कदाचित हो सकता है डाल दे, तो लक्ष्मी जी निकली, वरमाला 8वें स्कंद पाठ कीजिए आप, वो लक्ष्मी जी निकली तो लक्ष्मी जी सब में कुछ न कुछ दोष निकालने लगी, बोलते हैं ये देवता लोग हैं लेकिन फटाफट मरने वाले हैं, किसी गले में डाल करके कि क्या फायदा, और जिसके सामने निकलता था एक कृपा दीजिए, कृपा थोड़ा सेवा का मौका दीजिए हमको है? तो ऐसे फटफट वो बिता रही थी और दोषों को दिखा रही थी, कोई कोई बड़े तपस्वी है लेकिन तपस्वी होकर के क्रोध का जय नहीं किया है? और कुछ लोग काम क्रोध मद लोभ मोह का तो जय किया है, लेकिन वो लोग का मुख देखने के लिए वो सुंदर कुंदर नहीं है, ऐसा 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 गलती निकालती जाती थी दोष सब में, तो सब में दोष निकाल करके शिव जी में भी दोष निकाला, ब्रह्मा जी के बाद ओहो 4 मुख बहुत लंबा आयुष्य, लेकिन लंबा आयुष्य से क्या, आखिर मरना तो होता है ना, तो ब्रह्मा जी को भी छोड़ा, शिव जी भी लाइन में लगे हुए थे, हाँ भगवान शिव लाइन में लगे हुए थे, ऐसा कहते लिखा भागवत में लिखा, तो बोले हाँ ये पुरुष बिल्कुल योग्य है, क्यों, क्योंकि ये कभी नहीं मरने वाला पुरुष है। एक दूसरी बात बोलते हैं, हाँ वो सुंदर भी अतिल सुंदर, शिव जी बहुत सुंदर है तो सुंदर भी है, लेकिन इनको घर बार नहीं है, कौन जाकर के उनके साथ रहेगा, घर बार तो, अरे वाइफ है तो घर चाहिए ना वाइफ को, तो ये घर बार नहीं है, इसलिए ये भी योग्य नहीं। और एक रह गए भगवान विष्णु, तो विष्णु तो कोई इच्छा था नहीं, वो तो साइड में बैठे हुए थे, लेकिन वो खोदती हुई वहां गई तो बोलते इसमें भी एक दोष है, बोले क्या दोष है, बोले हमको नहीं चाहते हैं, लेकिन नहीं चाहता तो क्या हुआ, इसी पुरुष को मैं पति रूप में वर्णन करती हूँ, ये लक्ष्मी जी ने वर्णन किया है। शुद्ध गोसाई बात कहते हैं कि तब तालम ननु सुचित न, कहते उन भगवान के गुणों की अनंतता को दिखाने के लिए एक बात कह देना काफी हो जाएगा, कि धन की अधिष्ठात्री विभूति साक्षात जस्या अंग्री रेण जुसते। यद्यपि कहते अन अभिप्सो, भगवान उनको नहीं चाहते थे, फिर भी लक्ष्मी ने जाकर के उनके गले में वरमाला डाला। भागवतम साक्षी है, भगवान की इच्छा विच्छा नहीं थी कि लक्ष्मी जी माला डाले, मुझे वर के रूप में स्वीकार करे, लेकिन लक्ष्मी जी बोले नहीं चाहते हो तो क्या हो गया, पर इसी पुरुष का चरणों की सेवा करनी चाहिए और सदैव उसके साथ अभी रहती है, बाकी सब पुरुषों के पास से चली जाती है। कितना भी पूजन करे, धनतेरस धनतेरस कहो, तेरस क्या करो या बारस क्या करो, भाग्य में वो जब तक है तब तक रहेगी, स्थाई एक ही जगह में है, भगवान विष्णु के पास स्थाई है लक्ष्मी जी। तो भगवान का गुणों का गान करते हुए कहते हैं आगे के श्लोक में, अथापि यद पाद न खाव सुष्टम जगत विरंचो अपहत अर्ण अम्ब शेषम पुनाति अन्न तमो मुकुंदात को नाम लोके भगवत पदार्थ। बहुत सुंदर श्लोक है, भगवान के गुणानुवाद गाते हुए कहते हैं, अथापि यद पाद नख अवशिष्टम, ये घटना है, भगवान वामन अवतार लिया और बलि महाराज के यज्ञ में बलि महाराज के पास तीन पैर भूमि मांगा था, उस समय की घटना में अनुवाद पहले बता देता हूं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने उन कमंडलु से जल लेकर के भगवान के चरण चन्नार बिंद पर नख पर डाला हुआ जल जगत विरंचो अपहता अर्ण अम्ब उन कमंडलु में ले लिया गया था, वो जल को भगवान के पाद पद्मों को धो करके वो जल आ रहा था, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलु में लिया और वो कमंडलु में लिया हुआ बल और जल वो भगवान का पाद पक्षालन जब नीचे गिराए तो शेषम पुनाति भगवान शिव जी की जटा में वो सीधा गिरे और शिव जी को पावन करता हुआ उन त्रिलोकी को पावन करते हैं, उन गंगा के रूप में मंदाकिनी के रूप में और पताल में क्या बोला जाता है गंगा को, पताल में तो ना भागीरथी तो पृथ्वी पर पताल में एक दूसरा नाम है अलकनंदा आकाश में, मेरा माइंड भी बूढ़ा होता है तो लगता है बादाम खाना पड़ेगा जो कुछ, तो वो तीनों लोक को पवित्र करता है, वो है क्या भगवान का पाद पक्षालन, भगवान की समर्थता बता रहे हैं, हम जिनका भजन कर रहे हैं कोई एले गेले व्यक्ति नहीं है, इस संसार में बड़े बड़े लोग देवी देवता है लेकिन हम लोग कोई एले गेले का भजन नहीं कर रहे। देखिए साफ शब्दों में लिखा है, अथापि यद पाद नखावत सुष्टम, कहते हैं कि उन शेष समेत ईश्वर समेत शिव जी के समेत पूरे त्रिलोकी को पावन करने वाला जिनका पाद प्रक्षालन है उन भगवान मुकुंद उन कहते हैं उन कृष्ण के अलावा उन भगवत शब्द का क्या अर्थ है। लोग जहां तहां भगवान लगा रहे हैं ना, पुलिस वाला पकड़ता है हम उनको बोलते हैं आप भगवान है, डॉक्टर को बोलते हैं हमारे बचा लीजिए आप है डॉक्टर आप हमारे लिए भगवान है, भगवान शब्द जहां तहां यूज मत कीजिए। शुद्ध गोस्वामी बात कहते हैं कि भगवान शब्द का उनके अलावा कृष्ण के अलावा या विष्णु के अलावा अर्थ क्या है। मुकुंदात अन्नतम मुकुंदात, मुकुंद के अलावा अन्नतम माने दूसरा कोई, ये भगवत शब्द जो है वो कहां पर प्रयोग किया जाएगा, जिसका पाद पक्षालन ब्रह्मा जी कमंडलों में लेते हैं और अपने आप को कृत कृत समझते हैं और भगवान शिव उनको अपनी जटा में धारण करते हैं है? और सारा संसार उनमें एक बार डुबकी देकर के अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं है? समस्त पापों से। ये गंगा जिनके पाद पक्षालन जल है, देखिए ये भगवान की महत्ता है। हम लोग भजन करते हैं लेकिन कृष्ण कृष्ण करते हुए सो जाते हैं है? क्यों? महात्मा ही पता नहीं है। अरे कृष्ण नहीं सो जाते, निर्णय आता आपको जब नहीं, सच बताइए एक माला में एक बार जब की किसको लगता है? कोई नहीं बोलेगा। कौन नहीं सोता है बोलो तो हाथ उठाएंगे लोग। सुनिश्चित हमारा अभ्यास नहीं है इसलिए हम लोग को जब की लगता है, और उसका कारण ये भगवान का महिमा हम लोग नहीं जाने हैं। और महिमा जिनका नहीं जाने हैं तो हम लोग जब करेंगे किसका करेंगे? ना बेटे का करेंगे, वाइफ का करेंगे, और किसका करेंगे? उनका नाम लगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। भगवान की महिमा नहीं है। जिनकी महिमा हृदय में होती है व्यक्ति उनका नाम जप करने में तकता नहीं है। हम लगा दिया जाए फिल्म का गाना, ओहो मेरे सपनों की रानी ना आएगी ना जाएगी, ओहो बहुत ओल्ड ओल्ड क्यों लगाया? क्यों? वही महिमा है। और सीरियल लगा दिया जाए, चटाका मार करके देखेंगे लोग, वाह सास भी कभी बहू थी है ना। कोई सीरियल आती है हम लोग कैसा देखते हैं? क्यों? उसका महिमा है हमारे हृदय में, भगवान का महिमा नहीं है। जब साधु संगति हम लोग करते हैं तो ऐसी ऐसी उक्तियां इसमें हैं कि भगवान की महिमा दिमाग में चलती है। मैं कह रहा था इस श्लोक का तात्पर्य देखते, भगवान जब कृष्ण ने वामन रूप लिया था और वामन रूप लेकर के तीन पैर भूमि उन्होंने बलि महाराज से मांगा था, बोला मुझे तीन पैर भूमि चाहिए, और बहुत बौने ब्राह्मण के रूप में वो प्रकटित हुए थे, छोटा सा छोटा छोटा पैर। बलि महाराज के पास भूमि मांगी तो बलि महाराज हंसने लगे, अरे ये ब्राह्मण की बुद्धि भी उनकी अंग की तरह छोटी है, है? अरे वो बलि के पास मांग रहे हैं, उनको चाहिए कि कुछ दो चार गांव या कुछ पृथ्वी का टुकड़ा मांग ले, दोबारा मांगना नहीं पड़े। और उन्होंने सजाग भी किया, बोले देखो बुनी आप लोग, आपको दोबारा मैं मौका देता हूँ, शायद हो सकता है कि आपको मांगना नहीं आया है, तो आप बलि के पास मांग रहे, मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ, एक बार मेरे पास मांग करके आपको दोबारा कहीं मांगने जाने की जरूरत है? भगवान बोलते देखो मैं ब्राह्मण हूँ ना, आप तो देने में समर्थ है लेकिन मैं तो ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण के लिए संतोष बड़ा धन है। असंतुष्ट व्यक्ति को आप कितना भी दे दे वो आपका राज्य दे देंगे ना, तो फिर भी वो दूसरा कोई देखेगा है? कोई है कि नहीं दूसरा राज्य? असंतोषी व्यक्ति को कुछ भी दे दिया जाए, महाराज ने कहा वामन देव ने कि देखो मैं तो संतोष में सुख देखता हूँ, इससे मेरे लिए काफी। बोला ठीक है, उन्होंने दिया और भगवान ने चालू किया अपना विस्तार, उरुक्रम जो उनका नाम है वो चालू किया, वो उनका पूरा शरीर दसों दिशा में भर गया, और एक पैर लंबा किया, वो पैर स्वर्ग लोक को तो देखते देखते क्रॉस किया, खटाखट स्वर्ग लोग ऊपर जा रहा था, जन लोग मार लोग क्या आ रहा है क्या आ रहा है वो लोग देख रहे थे, सब निवासी लोग हैं, सब लोग ने जाना हो ये भगवान का पाद पद्म ऊपर हुआ है, सब लोग नतमस्तक होकर बड़े बड़े ऋषि मुनिगण हैं, और सर सर जा रहा था भगवान का जो पैर था, और जा करके ब्रह्म लोक को भी क्रॉस करके तटाक से लगा, कहां? उन कटाह में, जो ये अंडा है ब्रह्मांड, ये ब्रह्मा का अंडा है, वो एकदम पैक है बाहर की हवा भी अंदर नहीं आ सकती है और पानी भी बाहर का अंदर नहीं आ सकता है, एकदम पैक है। वो लगा उस कटा के साथ भगवान का पाठ पद्म था, वो थोड़ा क्रैक हो गया उसमें। वो क्रैक से कारण समुद्र का जल, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड उन कारण समुद्र में तैर रहे, तो वो कारण समुद्र का अप्राकृत जल गिरा भगवान के पाद पद्म जन नाखून टच हुआ था, और क्रैक को भगवान के पाद पद्म को धोता हुआ वो जल ब्रह्मलोक में पहले उतरा है? तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में ले लिया, अरे ये तो हमारे प्रेमास्पद श्री भगवान का ये पाद प्रक्षालन है। ब्रह्मा जी ने आचमन किया, अपने सर पर डाला है? अपने को कृतकृत समझा। कहने का भाव यही है कि ब्रह्मा और शिव जी समेत समस्त जल को पावन करने वाला ये जो जल है वो गंगा जी के रूप में आज भी पतित पावनी के नाम से जिनका नाखून का जल गिना जाता है, और लक्ष्मी जी जिनकी पत्नी है, और शिव जी इस पावन जल को अपने सिर पर डाल करके अपने आप को कृतकृत मानते हैं, ब्रह्मा जी उनका आचमन करते हैं, वो पुरुष का हम लोग भजन करते हैं। समझना चाहिए ना कि हम लोग किसका भजन करते, कोई अलग अलग व्यक्ति का भजन नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग माला सावधानी पूर्वक करना चाहिए, भगवान की महिमा को याद करते हुए स्मरण करते हुए वो जप माला करेंगे आपको जप की ना। और इसी प्रकार की अनेक कथाएं श्रीमद् भागवतम में भरी पड़ी है, तो छोटा सा तीन चार श्लोक मैंने आपके सामने, आगे भी आने वाला श्लोक तो अत्यंत अद्भुत श्लोक है, लेकिन आपका समय हो गया लगभग, कुछ प्रश्न के लिए भी मैं समय छोड़ूंगा 10 मिनट, तो आप लोग के पास अगर कोई प्रश्न, अनुवाद भर किया मैं, व्याख्या बाकी है, वो कभी दोबारा बैठूंगा ना उनकी गोल करके व्याख्या करूंगा। अरे किसने बोलने में एक एक श्लोक को लिया जाता है मालूम आपको, एक श्लोक पर एक एक दो दो घंटा क्लास लिया जा सकता है। तो पर मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा लोभ उत्पन्न हो जाए हरि कथा में भगवान की महिमा ऊपर ऊपर से बता करके पूरा किया, तो आप लोग के पास कोई जिज्ञासा है तो आप रख सकते हैं, कोई प्रश्न है किसके पास? जो आज का प्रवचन हुआ तो उनमें कोई अगर प्रश्न किसी के पास है, अर्वाचीन से अर्वाचीन ब्रह्मा से लेकर के सॉरी प्राचीन से प्राचीन और अर्वाचीन से अर्वाचीन हरे कृष्ण भक्तों का उदाहरण देकर के मैंने आपको भगवान की महिमा को बताया। अब इसके अंतर्गत आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग रख सकते हैं। कोई प्रश्न है? ठीक है, हम लोग कीर्तन करेंगे फिर, अगर प्रश्न नहीं है तो उसी भगवान का गुणानुवाद नाम कीर्तन करेंगे। तो इस कलयुग का एकमात्र क्या है, कलयुग का एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय उठाए प्रभु मंडन उठाए, और बजाइए हींच लोगों को, अगर कोई हींच बजा सकता है